हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बाहर ही उसे मुराद मिल जाता है और वो इनायत को देखकर गंभीर होता हुआ उससे कहता है, इनायत, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब, तुम भाई के साथ उनके घर पर रहती हो, कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? इनायत का चेहरा उदासी से भर जाता है और वो धीरे से ना में सर हिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं मुराद, अब जो भी है वो मेरी किस्मत है। मैं अपनी किस्मत को मान चुकी हूँ और खुद के फैसले को भी। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अब इन सबके बीच ना पड़ो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और कोई तकलीफ उठानी पड़े। तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हो। मुराद कुछ कहता उससे पहले ही इनायत वहां से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसके आंसू निकलने को हो रहे थे और वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। जब वो किचन में गई तो देखा कि उसकी अम्मी पहले ही किचन काउंटर के पास खड़ी है और वो कटोरियों में मिठाई के एक एक टुकड़े को रख रही है। शायद वो भी यहाँ पर मीठा लेने ही आई थी। इनायत भी उनके बगल में आ जाती है और मुस्कुराते हुए दूसरी ट्रे में मिठाई को रखने लगती है। लेकिन इनायत की अम्मी ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछा, इनायत, तू ठीक है ना? मुझे तेरी फिक्र हो रही है। तू कभी अकेली नहीं रही है। ऐसे में रियाज के साथ उसके घर पर तो ठीक से एडजस्ट हो गई है ना? तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई है? देख, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। पर इनायत ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया और अपनी अम्मी को देखकर कहने लगी, अम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं ठीक हूँ और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जिसे एडजस्ट करने के लिए बड़ों की जरूरत पड़ेगी। अब आप भूल गई हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने पति के साथ रहती हूँ। आपको लगता है कि रियाज मेरा ठीक से ख्याल नहीं रख रहे होंगे? अम्मी अब्बू के जाने के बाद हम सब बेसहारा हो गए थे और उस समय हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन देखिए, रियाज ने हमें सहारा दिया और अपने घर में रहने दिया। कौन ऐसे ससुराल वाले होंगे जो शादी के बाद अपनी बहू की माँ को अपने घर में रखते हैं? पर उन लोगों ने दिल से आपको अपनाया और हम सबको अपने परिवार का हिस्सा समझा। क्या ये काफी नहीं है बताने के लिए कि वो लोग दिल के कितने अच्छे हैं? और रियाज थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर करते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे उसकी आदत हो गई है। आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो गई हूँ और सब कुछ ठीक है। मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी, पर फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे नौकर हैं, कोई मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। रियाज का बस चले तो मुझे सारा दिन बेड से बांध कर रखें। पर तभी इनायत को एहसास होता है कि वो अपनी माँ को सांत्वना देने के चक्कर में क्या बोल गई है। अभी एक दिन पहले ही उसे अपने पैरों पर बंधी हुई जंजीर की पकड़ महसूस होने लगी थी। आज भले ही उसके पैर आज़ाद थे, लेकिन मन तो अभी भी कैद में ही था। इनायत की बात सुनकर उसकी अम्मी को बहुत सुकून महसूस होता है। वो इनायत के माथे को चूम लेती है और उसके अच्छे भविष्य की दुआ करने लगती है। जन्नत अमल और बाकी सब के साथ मिलकर इनायत काफी अच्छा महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कुछ पल कभी खत्म ही ना हो, वो यहीं रुक जाए और इनायत को वापस रियाज के साथ जाना ही ना पड़े। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि जल्दी एक सर्वेंट ने आकर बताया कि रियाज उसे नीचे बुला रहा है, उनके मेंशन वापस जाने का समय हो गया है। इनायत डर जाती है और घबराते हुए बाकी सबको देखने लगती है। बाकी सब इनायत से गले मिलकर उसे अलविदा कहते हैं। नीचे चाची ने इनायत के लिए बहुत सारे तोहफे और खाने पीने का सामान पैक कर दिया था और वो सारा सामान मुराद गाड़ी में रखवा रहा था। स्टडी रूम से आते हुए रियाज देखता है इनायत सबसे गले मिलकर विदाई ले रही है। रियाज इनायत के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए सबको देखकर अलविदा कहता है। वो इनायत को लेकर अपने साथ घर से निकल जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने इनायत को अंदर बिठाया और खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। साइड मिरर से इनायत अपने पूरे परिवार को देख रही थी जो उसे हाथ हिलाते हुए बाय कह रहे थे। वहां तक तो इनायत ने अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोक रखा और मुस्कुराते चेहरे के साथ सबको देखकर हाथ हिलाकर बाय कहने लगी। पर जैसे ही रियाज की गाड़ी हवेली के बाहर निकलती है, वैसे ही इनायत का चेहरा उदासी से भर जाता है और जिन आंसुओं को उसने रोका हुआ था वो बहने लगते हैं। शायरा को भी अहमद अपने साथ ले गया था। उसे भी शायरा को 10 बजे से पहले हॉस्टल छोड़ना था, वरना उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होती। सारा काम समेटकर चाची और इनायत की अम्मी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मुराद की भी सुबह एक मीटिंग थी, इसीलिए वो भी सोने चला गया था, और जन्नत भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। दाई जान किचन में बाकी का काम खत्म कर रही थी और अमल उनकी मदद कर रही थी। एक बार जब सारा कुछ हो जाता है तो दाई जान अमल को भी कमरे में जाने के लिए कहती है। अपने दुपट्टे को सही करते हुए अमल अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ खींचकर एक कोने में कर लिया और अगले ही पल उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अमल की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से देखने लगी। अंधेरे में उसे वो शख्स नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि वो कौन है। उसने अपने दोनों हाथों से उस शख्स को धक्का दिया और गुस्से में कहने लगी, मैंने मना किया था ना आपसे कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे, तो फिर क्यों बार बार मेरे करीब आ जाते हैं? आपको एहसास नहीं है कोई हमें ऐसे देख लेगा तो क्या गजब हो जाएगा? तभी वो शख्स गुस्से में अमल के कमर पर हाथ रखता है और उसे दीवार से लगाते हुए कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है करण, अमल ने बेबसी के साथ करण को देखते हुए कहा, जिसकी आंखें इस समय लाल हो रखी थीं।